Iran Radio Podcast। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। की क्रांति को दबाने के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि अब पूरे हिंदुस्तान में शांति स्थापित हो चुकी है और शहरों और गांवों पर फिर से उनका पूर्ण नियंत्रण हो चुका है, तो उन्होंने हिंदुस्तानियों को लोन देने का ऐलान किया। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 28वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे कि लोन जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को देने का ऐलान किया, ये पहली बार था कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों की किसी भी तरह मदद करने का विचार किया। उस वक्त तक वे सिर्फ लेना जानते थे और तरह तरह के क्रूर कर लगाकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को लूट रहे थे। अंग्रेज़ हुकूमत ने ऐलान किया कि छोटे किसानों को कर्ज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वे अपना कर्ज लौटा पाएंगे या नहीं। ये लोन बड़े जमींदारों को या शहरों में रहने वाले रईस जादों को दिया जाना था। हिंदुस्तान में कारोबार करने वाले ब्रिटिश बैंकों द्वारा ये लोन दिया जाना था। ये लोन लीरा में नहीं बल्कि रुपए में दिया जाने लगा, जो स्थानीय मुद्रा थी। जो भी हिंदुस्तान में ये खबर सुनता था वो समझ जाता था कि अंग्रेज़ भविष्य में किसी भी आंदोलन या क्रांति को पनपने से रोकने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। उन्हें लगता था कि आखिरकार ब्रिटेन को ये एहसास हो गया कि ताकत और क्रूरता के बल पर हुकूमत करना आसान नहीं है, और ख़ुद उनके कथनानुसार भाले की नोक पर बैठा नहीं जा सकता। कुछ ही समय बाद हिंदुस्तान में ब्रिटिश बैंकों के सामने लोन लेने वाले भारतीय नागरिकों की कतारें लग गईं। भारतीयों के बीच रुपए का लेन देन होता था और लोन लेने वाले लोग अपनी सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने लगे। ये वस्तुएं या ब्रिटेन से बनती थीं या हिंदुस्तानी कारखानों में, लेकिन यहाँ भी उनके मालिक अंग्रेज़ ही होते थे। लोन दिए जाने का सिलसिला भी शुरू ही हुआ था कि हिंदुस्तानी बाज़ार में एक खबर तेज़ी से फैली कि विदेशी मुद्रा महंगी हो गई है। भारतीय बाजार में एकमात्र विदेशी मुद्रा इंग्लिश लीरा थी, जिसकी कीमत में अचानक उछाल आ गया। अब जिसे भी एक लीरा खरीदना था उसे उसके मुकाबले में ज़्यादा रुपए देने पड़ते। रुपए के मूल्य में कमी के कारण बहुत सी चीज़ें महंगी हो गईं। सोने का भाव भी महंगा हो गया था। भारतीयों के लेन देन वाले ब्रिटिश बैंकों ने लोगों से सोना खरीदने का ऐलान कर दिया। अंग्रेज़ों ने लोन देने के लिए ऐसे लोगों को चुना जिनकी माली हालत कुछ बेहतर थी। इस तरह के परिवार पुराने ज़माने से ही अपनी बचत को सोने के रूप में सुरक्षित कर लिया करते थे। अक्सर लोग परिवार की महिलाओं के लिए सोने का आभूषण खरीद लिया करते थे। अब लोगों को एक तरफ महंगाई का सामना था तो दूसरी तरफ उन्हें लोन की किस्तें चुकाने में अपनी आमदनी खर्च करनी पड़ती थी। उन्होंने संभाल कर रखे गए सोने को बेचने के लिए बैंकों का रुख किया। ब्रिटिश बैंक भारतीयों को सोने को रुपए में खरीदते थे, जिसके मूल्य दिन प्रतिदिन गिर रहे थे। ये रुपए बैंकों की किस्त के रूप में फिर से बैंक में वापस लौट जाते थे। हिंदुस्तान पर कब्जे के बाद ब्रिटेन ने इस देश की सभी सोने और हीरे की खानों को लूटना शुरू कर दिया था। फिर भी अंग्रेज़ों की भूख नहीं मिट रही थी। उनकी निगाहें उन आभूषणों पर थीं जो भारतीय महिलाएं बहुत संभाल कर रखती थीं और ख़ास मौक़ों पर उनका इस्तेमाल करती थीं। यहां तक कि उनकी निगाहें भारतीय लड़कियों की गर्दन या हाथ पैरों में पहनने वाले गहनों पर भी थीं। इसीलिए उन्होंने लोन देकर और विदेशी मुद्रा के मूल्यों में छेड़छाड़ करके लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। जिस वक्त हर देश कोशिश कर रहा था कि सोने को अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित रखे। भारतीयों का सोना अंग्रेजों की धोखाधड़ी से लंदन के बैंकों में जमा हो रहा था। अगर भारतीयों के पास अपने कारखानों में माल का उत्पादन करने की क्षमता होती तो मुद्रा की कीमत में वृद्धि उनके पक्ष में होती, क्योंकि वे जितना अधिक माल बेचते उतनी अधिक मुद्रा अर्जित करते। लेकिन अंग्रेजों ने इस दौरान भारतीय उद्योगों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेजों के कब्जे से पहले भारत में एक बड़े कपड़ा उद्योग के अलावा कई अन्य उद्योग थे। भारतीय कपड़े एशिया और यूरोप के कई देशों और यहाँ तक कि इंग्लैंड में निर्यात किए जाते थे। अंग्रेजों ने इन कपड़ों को अपने देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए इन पर उच्च सीमा शुल्क लगा दिया। इन जटिलताओं के कारण उत्पाद की कीमत बढ़ गई और ग्राहकों के बीच इनकी लोकप्रियता कम हो गई। अंग्रेजी सरकार इंग्लैंड के बंदरगाहों पर आने वाले भारतीय कपड़ों पर 80% सीमा शुल्क लेती थी, यानी अगर कपड़े की कीमत 10 लीरा होती थी तो व्यापारी को सरकार को 8 लीरा देना पड़ता था। इस तरह कपड़े की कीमत 18 लीरा हो जाती थी और फिर कोई भी इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाता था। कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने एक सख्त कानून बनाया। इस कानून के अनुसार इंग्लैंड में भारतीय कपड़े का उपयोग करना या कोई भी भारतीय सामान खरीदना अपराध हो गया, जिसके लिए सजा भी निर्धारित की गई थी। लेकिन भारत में सब कुछ इसके विपरीत था। भारत में आयातित ब्रिटिश माल पर सीमा शुल्क के रूप में कोई राशि नहीं ली जाती थी। इसी कारण इन वस्तुओं को सबसे सस्ते दामों पर भारत में आयात किया जाता था, ताकि लोग इन्हें खरीदने में रुचि लें। चूंकि अंग्रेजी कपड़े मशीनों और बड़े कारखानों में तैयार किए जाते थे, इसलिए वे हाथ से और करघे पर बुने जाने वाले भारतीय कपड़ों की तुलना में सस्ते होते थे। लोगों ने ये सस्ते कपड़े खरीदना शुरू कर दिया, जबकि भारतीय कपड़े बुनकरों के हाथों में ही रह गए, जिन्हें बेचा नहीं जा सका। जब हिंदुस्तान के उद्योगपतियों के एक समूह ने यूरोप से कुछ बुनाई मशीनें अपने देश में आयात करने का फैसला किया, तो अंग्रेजों ने इन मशीनों पर सीमा शुल्क इतना बढ़ा दिया कि उनकी कीमतें आसमान छूने लगीं। इसके बावजूद कुछ समय बाद इन उपकरणों के भारत में आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। अधिकांश भारतीय कपड़ा बुनकरों ने अपनी नौकरियां खो दी। अंग्रेज इनमें से कुछ बुनकरों को जबरन ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यशालाओं में काम करने के लिए ले गए। इसके अलावा धातु, कांच और कागज जैसे उद्योग भी इसी तरह नष्ट कर दिए गए और लाखों भारतीय श्रमिक बेरोजगार हो गए। इन लोगों के एक समूह ने, जो अब शहरों में नहीं रह सकता था, खेती किसानी के लिए गांवों का रुख किया। किसान अपने छोटे छोटे खेतों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते थे, ताकि वे उन्हें इन विस्थापित श्रमिकों को बेच सकें। ऐसी स्थिति में प्रत्येक किसान के पास जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा होता था, जिसके उत्पाद से उसके परिवार का भरण पोषण ही हो पाता था। गांवों में गरीबी पहले से भी अधिक बढ़ गई। हालांकि कई बेरोजगार श्रमिक जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा भी खरीदने में सक्षम नहीं थे। उनके पास भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। 1834 में भारत में ब्रिटिश गवर्नर ने एक रिपोर्ट में लिखा था, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों ने भारत के पूरे मैदानी इलाके को ढक दिया है और सफ़ेद कर दिया है। शुरुआत में ब्रिटिश सामान बंदरगाहों और तटीय शहरों में आयात किया जाता था और ज़्यादातर इन शहरों के आसपास वितरित किया जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने पूरे भारत में 50,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई। इस रेलवे ने ब्रिटिश सामान को भारत के सुदूर हिस्सों तक पहुँचाने में मदद की। रेलवे ने अंग्रेजों को अपने सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाने और किसी भी विद्रोह और विरोध को तुरंत दबाने में मदद की। क्योंकि भारत की ब्रिटिश सरकार इस रेलवे का उपयोग सैनिकों के स्थानांतरण और प्रशासनिक कार्य करने के लिए करती थी और ब्रिटिश सामान की सस्ते दाम पर ढुलाई की कोशिश करती थी, इसलिए रेलवे की आय दिन ब दिन कम होती जा रही थी और रेलवे को घाटा उठाना पड़ रहा था। अंग्रेज हुकूमत ने एक बार फिर नए कर लगाकर इस नुकसान की भरपाई की कोशिश की। हालांकि 1925 में भारतीय रेलवे का कर्ज 10 मिलियन लीरा तक पहुंच गया था। भारत के बड़े रेलवे नेटवर्क का निर्माण अपनी खेती बाड़ी से हाथ धो बैठने वाले बेरोजगार भारतीय श्रमिकों के श्रम से किया गया था, जिन्होंने भारतीय उद्योगों के विनाश के बाद अपना रोजगार खो दिया था। लेकिन इस विशाल नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए किसी भी भारतीय को नियुक्त नहीं किया गया और सभी रेलवे अधिकारी अंग्रेज थे। किसी भी भारतीय व्यक्ति को ट्रेन में फर्स्ट क्लास, यहाँ तक कि सेकेंड क्लास में यात्रा करने का अधिकार नहीं था, केवल थर्ड क्लास ही भारतीयों के लिए आरक्षित था। जानवरों की गाड़ियों की तरह संकीर्ण और गहरे रंग की रेलगाड़ियों को डिजाइन किया गया था, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय ठूस ठूस कर भरे होते थे। अंग्रेजों ने न केवल भारत के आम लोगों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उनके शासकों को भी अपमानित करने का कोई मौका हाथ जाने नहीं दिया। 1885 में एक अंग्रेज पत्रकार को उस समय एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा जब वो ब्रिटिश वायसराय के आवास पर पहुंचा। रिपोर्टर ने कि जो भारत के कुछ स्थानीय शासकों के साथ वायसराय की बैठक पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहुंचा था, उसने किसी काम के लिए एक नौकर को बुलाया। उसने नौकर को उनके चमकदार जूतों और पतलून से पहचान लिया। जिस आदमी को रिपोर्टर ने बुलाया था, उसने एक पल के लिए अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। रिपोर्टर ने उसे दोबारा बुलाया। इस बार उस आदमी ने अफसोस के साथ अपना सिर धीरे से हिलाया, लेकिन फिर भी अपनी जगह से नहीं हिल सका। रिपोर्टर उसके चेहरे को देखता रह गया। उसे नहीं पता था कि नौकर उसके पास क्यों नहीं आया। दूसरी ओर उसे लगा कि उसने इस आदमी को कहीं देखा था। उस आदमी ने फिर से रिपोर्टर की आंखों में देखा और बहुत धीरे से अपना सिर हिलाया। रिपोर्टर को अचानक उसका चेहरा याद आ गया। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और वह उस आदमी के चेहरे को देखता रह गया। वो भारत के उन स्थानीय शासकों में से एक था जिनसे ये रिपोर्टर कल मिल चुका था। एक दिन पहले ये शासक शानदार परिधानों और आभूषणों के साथ उनके सामने आया था। उसके गले में कीमती हार लटक रहा था और उसने कई हीरे और जवाहरात पहन रखे थे, लेकिन आज वो एक नौकर के भेष में था। पत्रकार आश्चर्यचकित होकर शासक के पास गया और बोला, ये क्या माजरा है? आपने अपने नौकरों की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? आप उनके जैसे चमकदार जूते और पैंट क्यों पहने हुए हैं? शासक ने उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं, वे हमारे सेवक हैं और हम अपने अंग्रेज प्रभुओं के सेवक हैं। अगर हम अपने मालिक के घर बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों के साथ उपस्थित होंगे तो वो इसे अपना अपमान समझेंगे। हमें प्रभु के सामने सेवकों की तरह कपड़े पहनने चाहिए। शासक का अर्थ है भगवान। वो भारत के ब्रिटिश वायसराय थे। वायसराय 1857 की क्रांति की हार के बाद भारत के ब्रिटिश गवर्नर को दी गई एक उपाधि थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री पॉडकास्ट का 28वां एपिसोड था। इतिहास में हमारे लिए कई सबक हैं और जब हम उसे अच्छी तरह से नहीं सीख जाते, वो एक धैर्यवान शिक्षक की तरह खुद को दोहराता रहता है। अतीत का जीवन हमारा इतिहास है और हमारा जीवन भविष्य का इतिहास है। इतिहास के सबक सीखकर हम अपने भविष्य के लिए बेहतर इतिहास बना सकते हैं।